नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप संत शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार ने कहा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों के मसौदे का उद्देश्य डिजिटल निजी डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की चीन में फैली H1N1 वायरस पर कड़ी नजर। मंत्रालय ने लोगों से कहा, घबराए नहीं, सावधानी बरते। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर्स भास्कर ट्रॉफी 3-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच 46 अरब की लागत से तैयार किए गए 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन से न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो पेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन किया। इस पर 12 अरब रुपए की लागत आई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के अंतर्गत 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास भी किया। यह कॉरिडोर दिल्ली में रिठाला को हरियाणा में नथुपुर कुंडली से जोड़ेगा। श्री मोदी नई दिल्ली के रोहिणी इलाके में केंद्रीय आयुर्विज्ञान आयुर्वेद अनुसंधान संस्था के अत्याधुनिक भवन की भी आधारशिला रखेंगे। यह कैंपस अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा ढांचा उपलब्ध कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह पिछले एक हफ्ते में चीन में फैले H1N1 वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने लोगों से भी सावधानी बरतने को भी कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR H1N1 वायरस के प्रशिक्षण परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 4 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा कर्मी शहीद हो गया। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटनास्थल से AK-47 और सेल्फ लोडिंग राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक क्षेत्र में गोलीबारी और तलाशी अभियान जारी था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पधार तहसील के ग्वार मासू इलाके में एक वाहन के सड़क से फिसलने के बाद पहाड़ी से लुढ़ककर नदी में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लापता है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के संपर्क में हैं और घटना के बारे में अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह समर्पित न हो। दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रवाद संगठन और राष्ट्रीय प्रथम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का बदलाव 5 बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का निरीक्षण किया। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में पहला है और देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना में से एक है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी ने कहा कि यह एक अनूठा परियोजना है और इसे देश के कई स्थानों पर शुरू किया जा सकता है। नई दिल्ली में भारत मंडपन में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग और नाबार्ड संयुक्त रूप से ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण भारत की उद्यमिता की भावना और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। पर्यटन मेले में महाकुंभ को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम के लिए दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अन्य पर्यटन आकर्षकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गंगा और यमुना नदी में बड़ी संख्या में जल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन जवानों को अंडरवाटर ड्रोन और सोनर सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। इस बीच रेलवे ने कुंभ मेले के लिए 13,000 रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इनमें 3,000 विशेष रेलगाड़ी होगी। ये रेलगाड़ी महाकुंभ के दौरान 50 से अधिक दिनों तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे पर आज तटरक्षक बल के एक अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रारंभिक खबरों के अनुसार एक सामान्य प्रशिक्षण उड़ान के दौरान यह दुर्घटना हुई। भारत और बांग्लादेश आज 185 मछुआरों और कुछ मछली पकड़ने वाले नौकाओं का आदान प्रदान करेगा जो एक दूसरे के यहाँ पकड़े गए थे। बांग्लादेश 95 भारतीय मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपने पर सहमत हो गया है। इसी प्रक्रिया में भारत ने भी अपने यहाँ हिरासत में लिए गए 90 बांग्लादेशी मछुआरों को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर फास्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। आज तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच के तीसरे दिन आज भारत ने अपने कल के स्कोर 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसमें मात्र 16 रन जोड़कर पूरी टीम 157 रन पर आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के लिए क्वालिफाई कर गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में आज राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगले 36 घंटों में उत्तरकाशी सहित राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर वर्षा होने या बर्फ गिरने की आशंका है। इधर दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं पर असर पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। यात्रियों को उड़ानों की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार में 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें जन्म महोत्सव के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना शहर में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है। लाओस में मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी में डिजिटल डिवाइस और कई बैंक के डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक सहित कई वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।